सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। आज 16 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं भास्कर, आप भागलपुर बिहार से हैं, अमरेंद्र कुमार, आप छपरा बिहार से हैं, और मुजिबुर रहमान, आप सहरसा बिहार से हैं। तो भास्कर, अमरेंद्र और मुजिबुर रहमान, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग एक बार फिर से जो कल जिस विषय पर बात कर रहे थे, नैतिकता, वो बात अधूरी रह गई थी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो उसे ही मैं आज पूरा करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आइए हम न्यूज एनालिसिस के तहत जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें जान लेते हैं। दोस्तों, न्यूज में तो एक जिम्बाब्वे की खबर थी। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यह मुझे जाने का मौका मिला है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, एक तरह से सैन्य कू हुआ है, आप कह लीजिए कि तख्ता पलट की घटना हुई है, लेकिन अभी सैन्य अधिकारियों ने उसको क्लियरली अनाउंस नहीं किया है। उसको लेकर के एक छोटी सी खबर थी। मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये किसी भी मायने में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो रॉबर्ट मुगाबे हैं वो अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता रहे हैं। काफी लंबे समय से वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं और काफी सम्मानजनक उन्हें स्थान विश्व नेताओं के स्तर पर प्राप्त भी है। तो थोड़ी सी मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाह रहा था कि रॉबर्ट मुगाबे कहां से हैं, ये आपको मालूम हो कि वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, रहे हैं, हैं। अब देखिए कि आगे स्थिति क्या होती है, बस इतनी ही जानकारी देनी थी। मैं तो दूसरी जो खबर थी वो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट के लिए, खासकर जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो हिंदी क्षेत्र है उनके लिए, कि कुंवर नारायण सिंह जो बहुत बड़े कवि रहे हैं उनका निधन हो गया है। तो मालूम होना चाहिए कि ये कवि हैं और हिंदी के बहुत जाने माने कवि रहे हैं, बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं। फ्रेंड्स, एक शब्द जो मैं आपको खासकर जिसके बारे में बताना चाहूंगा वो न्यूज में नहीं है, अब मैं न्यूज से हट करके अखबारों को लेकर के कुछ बातें कर रहा हूं। एक शब्द इस बीच में आपको अखबारों में पढ़ने को मिल रहा होगा 3-4 दिनों से, और वो शब्द है स्क्वाड, क्वाड, QUAD, क्वाड, ये शब्द आपको पढ़ने को मिल रहा होगा। इसकी चर्चा मैंने 3-4 दिन पहले बहुत ही संक्षिप्त रूप में की थी, लेकिन मैंने इसे अलग से हाईलाइट नहीं किया था। लेकिन चूंकि अब ये शब्द बार बार उपयोग में आ रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि इसे हाईलाइट किया जाना चाहिए। सिविल सर्विस के लिए हम इसी तरह से शब्द निकालते हैं और फिर उसे अपने लेखन में इस्तेमाल करने लगते हैं, तो हमारी जो भाषा है, सच पूछिए तो वो कंटेम्परेरी होती चली जाती है ना, सामयिक होती चली जाती है। देखिए, इनफैक्ट ये क्वाड्रल एक शब्द है, क्वाड, इसका हिंदी आप अनुवाद करेंगे तो अलग अलग शब्द मिल भी रहे हैं। कोई इसको चतुष्कोण कह रहा है, कोई इसे चतुर्भुज कह रहा है। इनफैक्ट कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है फ्रेंड्स कि चार, क्वाड का मतलब है चार। तो ये चार क्या है? ये चार जो है फ्रेंड्स, ये चार देश हैं, फोर कंट्रीज। और ये फोर कंट्रीज हैं आप जान चुके हैं, लेकिन मैं यह याद दिला रहा हूं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। मित्रों, मैंने जानबूझकर धीरे धीरे इनके नाम लिए हैं। अब आप एक बार मैप उठाएं या एटलस में देखें, आप देखें कि अमेरिका कहां है। नक्शे में देखें तो अमेरिका आपको नक्शे के बिल्कुल लेफ्ट साइड के कोने में लगभग दिखाई देगा, अगर आप मैप में देखेंगे तो, राइट। इसके बाद जापान बिल्कुल उसके पैरेलल चले जाइए ईस्ट में, तो आपको जापान दिखाई देगा, राइट। इसके बाद जापान के बिल्कुल नीचे चले जाइए, एकदम नीचे, तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पैरेलल तो नहीं, लेकिन जापान से जब लाइन खींचेंगे थोड़ा सा नीचे की ओर, तो आपको भारत दिखाई देगा। ये चार देश। और इनको एक लाइन इनके बीच में लाइंस मिला से इन्हें मिला दीजिए, लाइन से इन चारों देशों को जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि एक एक चतुर्भुज किस्म की आकृति बन जाएगी। तो आकृति भी चतुर्भुज किस्म की बन रही है और ये चार देश भी हैं। और आप जानते हैं कि अभी जो सम्मेलन हुए एपेक के और एशियन कंट्रीज के, उसमें इन चार देशों ने आपस में बातें की हैं और इसे विश्व के एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। और खासकर जो हमारा ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक एरिया जो है, उस दृष्टि से, क्योंकि यहां चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर साउथ और ईस्ट चीन चाइना सी में यह बहुत ज्यादा अपने प्रभुत्व का विस्तार करते जा रहा है। कुछ लोग इसे साम्राज्यवादी मंसूबा भी कह रहे हैं, इंपीरियलिस्ट डिजायर एम्बिशन। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि इन चारों देशों ने आपस में जो बातचीत की है और जो एक संगठन जैसी संगठित होकर के चाइना को संतुलित करने का जो एक उपक्रम शुरू किया है, ये विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। तो ये अब आपको वर्ल्ड अफेयर में या इंटरनेशनल अफेयर में इसे जोड़ लेना चाहिए, क्वाड शब्द को। एक नई चीज आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मिल गई है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। दोस्तों एक दो घटनाएं छोटी सी और हैं जो मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा एक दो दिन पहले की घटना भी, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है आजकल गोवा में ही होने लगा है, नवंबर में ही वो समारोह होता है। उसके लिए एक जूरी होती है, मतलब एक समिति होती है कह लीजिए, और वो समिति जो फिल्में दिखाई जानी है भारतीय, उनका चयन करती है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की कौन कौन सी फिल्में दिखाई जाए। तो उसमें भारत में बनने वाली सभी भाषा की फिल्मों को लिया जाता है ना। फिर उनको वहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वो फिल्में दिखाई जाती हैं, और वहां अगर कोई फिल्म दिखाई जाती है तो ये माना जाता है कि इसे एक मान्यता मिल गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल गई है, क्योंकि वहां तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आते हैं। अभी हुआ यह कि जो जूरी ने जो फिल्में सेलेक्ट की थी उनमें से दो फिल्मों को ड्रॉप कर दिया गया, और वो फिल्में थी, एक का नाम था न्यूड और दूसरे का नाम था एस दुर्गा। इन दोनों फिल्मों को ड्रॉप कर दिया गया। रीजन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उन फिल्मों में जो दृश्य थे या जो भी मैसेज होगा वो बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं लगा, जबकि जूरी ने इसे सेलेक्ट किया था। और चूंकि ये फिल्में अब दोनों नहीं दिखाई जाएंगी, तो उसके विरोध में जो जूरी के हेड थे सुजोय घोष, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ये एक घटना है, एक छोटी सी घटना है, बस आपको इस घटना का इस्तेमाल समय समय पर करना है और इस रूप में करना है कि जब वो जूरी है और जूरी को पूरा अधिकार है कि वो किन फिल्मों का चयन करती है, तो फिर ये दो फिल्में ड्रॉप क्यों की गई, क्योंकि उसको पूरी शक्ति है, पूरे अधिकार है कि वो किन फिल्मों का चयन करती है। तो अब आप देखते हैं कि बीच बीच में कुछ इस तरह की खबरें उड़ती हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित करने की कोशिश की जा रही है, एक पर्टिकुलर किस्म की नैतिकता या आचरण को बढ़ावा दिए जाने की बात हो रही है, जैसे पद्मावती फिल्म को लेकर के भी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर को लेकर के बात हो रही है। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसी के तहत आप इस एक घटना का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह, और मैं आपको बताऊं कि इस तरह की चीजें लगातार होती ही रही है, इससे पहले भी होती रही है, लेकिन ठीक है, वो हमारा अपना दृष्टिकोण है कि हम उसे किस रूप में लेते हैं। तो यह घटना आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के न्यूज में आपने, कल के न्यूज में आपने एक वाक्य सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से उड़ीसा में वर्षा की संभावना हो गई है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से उड़ीसा में वर्षा होने की संभावना है और तटवर्तीय क्षेत्रों में, यानी उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने की संभावना है, कुछ इस तरह की खबर उसमें थी। तो मैं बस केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप सब इसके बारे में सोचें, स्पेशली जो सिक्स और सेवंथ बैच के स्टूडेंट रहे हैं, कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने इन सारे तथ्यों पर क्लास में काफी विस्तार के साथ और मूलभूत जानकारी के साथ चर्चा की है। तो आप इसके बारे में सोचें, और सोच करके आप बस अपना दृष्टिकोण बनाने चाहे तो आप लिखने का अभ्यास भी कर लें, मुझे उससे अवगत कराने की जरूरत नहीं है, राइट। दोस्तों मैं थोड़ी सी न्यूज पेपर्स की भी बात कर दूं, मैं आपको दो क्लिपिंग्स आज बहुत अच्छी उपलब्ध कराने जा रहा हूं, जिसकी चर्चा मुझे कर देनी चाहिए, अदरवाइज कहीं ऐसा न हो कि ये चीजें मिस हो जाएं। एक मैं आपको हिंदुस्तान की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं जो शशांक हमारे पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, खासकर अभी जो भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान इन सब के बीच में जो आपसी बातचीत हुई है, जो दो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं उसको लेकर के उन्होंने एक लेख लिखा है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। और ठीक इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड का एक एडिटोरियल कमेंट है जो खासकर दिल्ली में जो प्रदूषण है जिसमें पराली को जलाने के मामले को लेकर के आप देख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है, यानी किसान जो अपने डंठल जलाते हैं उसको लेकर के, तो वो डंठल जलाने का क्या इलाज हो सकता है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं आप कह लीजिए, उस पर ये बहुत अच्छा लेख है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में पूछ लिए जाते हैं, है ना, तो आपको इसमें वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इसके आंसर के रूप में लिखे जाने चाहिए, तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिएगा। और दूसरे मैं और कई क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं नैतिकता एथिक्स वाले अपने मुख्य विषय पर, वक्त बहुत कम बचा है लेकिन चलिए जो कुछ भी हम बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत वो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नैतिकता है, नैतिकता इनफैक्ट है क्या, किताबों में आपको अलग अलग चीज परिभाषाएं पढ़ने को मिलेंगी लेकिन उसका केंद्र सबका एक ही मिलेगा, अलग अलग ढंग की परिभाषाएं होंगी, तो इसके केंद्र में जो है वो बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत ही सरल बात है, और मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप सब अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन इसकी जो एक शास्त्रीय किस्म की परिभाषा है नीति शास्त्र की अगर हम बात करें तो वो सिंपल सी बात है कि जैसे मैं कुछ भी करता हूं, मेरा व्यवहार है, मेरा आचरण है, मैं कुछ न कुछ करता हूं, तो मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जो निर्धारण करता है वह नीति शास्त्र है, यानी कि एक मापदंड मानक निर्धारित करता है कि हां ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, यह काम किया जाना चाहिए, यह काम नहीं किया जाना चाहिए, उसे हम कहते हैं नीति शास्त्र। फ्रेंड्स, आप फिर देखेंगे कि ये जो नीति शास्त्र है, जब आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो आपको पता लगेगा कि उसका निर्धारण करने वाले तो ढेर सारी एजेंसीज हैं, केवल एक ही नहीं है, जैसे धर्म, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण धर्म अपने अपने ढंग से करते हैं, और बहुत से धर्म ऐसे हैं जहां एक दूसरे के प्रति विरोध भी मिलता है लेकिन वो करते हैं धर्म। ठीक इसी तरह से आपको मिल जाएगा कानून, मतलब अमेरिका में जो चीज सही हो सकती है भारत में वो चीज गलत हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, भारत में जो चीज गलत है वो अमेरिका में सही हो सकता है, तो पता लगा कि एथिक्स का उस व्यापक दायरे में, मापदंड वाले दायरे अगर परिभाषा को हम अपनाते हैं तो कानून भी आ जाता है, फिर परंपराएं भी आ जाती हैं, ट्रेडिशंस भी, क्योंकि हर समाज के में कई समुदाय होते हैं, या कह लीजिए कि बहुत जगह तो समुदाय को समाज के रूप में ही अभिहित किया जाने लगा है, बोला जाने लगा है, उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं देखिए कि किस तरह से परंपराओं को लेकर के वो छटपटाते हैं, जब भी उनको अपनी परंपरा का उल्लंघन होते हुए दिखता है तो वो कितनी ज्यादा आक्रोश से भर उठते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, बावजूद इसके कि वो कानूनी रूप से सही है। तो आप देखेंगे कि ये जो तीन चीजें मैंने बेसिकली आपको बताई हैं, ये सब के सब इस बात का निर्धारण करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन इनके आपस में भी आपको द्वंद्व दिखाई देंगे, आपस में टकराव दिखाई देंगे, आपको इन सब की बिल्कुल एक ही दिशा दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून ही नैतिकता है, मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं, मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं और मैं जानबूझ करके समझा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि कानून और नैतिकता एक ही हैं, धर्म और नैतिकता एक ही हैं, परंपरा और नैतिकता एक ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मान करके चलिए कि नैतिकता एक बहुत बड़ी छतरी है और उस छतरी के नीचे ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम नैतिकता को इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो वह एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन उसके केंद्र में यही होता है कि वह सही और गलत का निर्धारण करती है। अब वह सही और गलत का निर्धारण किन आधारों पर कर रही है वो एक अलग मुद्दा है, वह एक अलग बात है। मित्रों, मैंने ये जो थोड़ी सी आपसे चर्चा की है, ये बहुत सोच समझकर चर्चा की है। आज मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है कि मैं अब इसको 2017 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर विश्लेषित कर सकूं, लेकिन मैं फिर से इस विषय को किसी दिन उठाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, और बहुत संभव हुआ तो कल ही, क्योंकि नैतिकता पर आप देखेंगे कि हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए हैं। मैं उन डेटा पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर आप 2017 के ही क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो आपको जान करके ये बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि जो आपका जनरल स्टडीज मेंस का फोर्थ पेपर है, जो 250 नंबर का होता है, उसमें 50 नंबर के क्वेश्चंस सिर्फ नैतिकता पर है। 250 में से 50 परसेंटेज आप निकाल लीजिए कि कितना, 20% क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक की जो व्यापकता है उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा आज करूं। हम फिर आगे इस चर्चा को मित्रों जारी रखेंगे। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं, योगेश पुरबिया, रीता गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से, विपुल कुमार पूर्णिया बिहार से, मुकेश गर्ग, विकास श्रीवास्तव, संतोष कुमार दिल्ली से, धनराज सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, प्रांजल मिश्रा, रचना मीना, इरफान सैफी सुल्तानपुर दोस्त उत्तर प्रदेश से, शैलेश बालाघाट मध्य प्रदेश से, चमकौर सिंह बाघेवालिया पंजाब से, दिव्येश प्रताप सिंह, अनूप सर्राफ और शिवम सोनी बांदा उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।